ओजोन परत के ह्रास के कारण वायुमंडल में अनेक गैसें विद्यमान हैं। तापमंडल के ऊपरी भाग में लगभग 25 किलोमीटर मोटी ओजोन गैस की एक परत है, जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के जीवधारियों तथा पेड़ पौधों के लिए और सौर ऊर्जा से बचाव के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि धीरे धीरे ओजोन गैस कम होती जा रही है। 2% गैस कम होने पर 1 डिग्री ताप पृथ्वी पर बढ़ जाता है। ओजोन की कमी से पर्यावरण के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। ऑक्सीजन गैस ही ओजोन गैस में बदल जाती है और वायुमंडल में इसकी मोटी परत बन जाती है। यह पृथ्वी के चारों ओर फैली है, जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए छलनी का कार्य करती है। सूर्य किरणों का ओजोन गैस की परत शोषण कर पृथ्वी के जीवधारियों एवं पेड़ पौधों की सुरक्षा करती है। वैज्ञानिकों ने ओजोन गैस कम होने के कारणों की खोज की है। जो कारण है मुख्य रूप से नीचे बता रही हूँ मैं आगे आपको, कि सबसे पहला है ध्रुवीय चक्रवात, दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट से निकली क्लोरीन गैस, तीसरा है परमाणु गैस के विस्फोट से निकली गैस, चौथा है परमाणु केंद्रों से रेडियोधर्मी विकिरण, पांचवा है आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता, और छठा है मानव द्वारा फ्लोरोकार्बन मतलब CFC यौगिक का निर्माण। जो CFC यौगिक है, इस पदार्थ का विघटन नहीं होता है। जब यह समताप मंडल से पहुंचता है, तब ओजोन पर अपनी क्रिया करके कम करता है। क्लोरीन गैस तथा उसके परमाणु ओजोन परत पर विपरीत प्रभाव डालते हैं तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। क्लोरीन एक परमाणु ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इससे ओजोन गैस की परत में छिद्र होता है। 1984 के वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन गैस की परत में 40 किलोमीटर व्यास के छिद्र का पता लगाया था। यह छिद्र ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण त्वचा कैंसर इत्यादि की बीमारियां बढ़ रही थी और वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही थी। ध्रुव चक्रवात से ओजोन गैस की परत प्रभावित होती है। दक्षिणी ध्रुव के चक्रवात देर तक रहते हैं, जिससे ओजोन छिद्र बनते हैं। इस संबंध में भारत अभी भी भाग्यशाली है कि भारत के ऊपर ओजोन की गैस अभी, ओजोन की सतह अभी सुरक्षित है। भारतीय भूभाग के ऊपर ओजोन गैस के परत की मोटाई उन देशों की अपेक्षा कम है। आगे हम देखते हैं कि ये जो ओजोन गैस है, ये ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत ये क्या है। इसके अंतर्गत कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। जब यह वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है, तब सूर्य की जो पराबैंगनी CFC किरणें होती हैं, उनको तोड़ देता है। अतः क्लोरीन तथा अन्य परमाणुओं से अलग होते हैं, जो ओजोन परत के लिए घातक होते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के अणुओं से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीजन में बदल देता है। यह प्रतिक्रिया एवं श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि क्लोरीन परमाणु ओजोन अणुओं को लगातार छोड़ते रहते हैं। मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करता है। उसके ऊपर जो पृथ्वी के रक्षा कवच होते हैं, ओजोन की परत, उसमें ह्रास से विश्व में यह समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे प्रशीतन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हेयर डाई तथा सुगंध का छिड़काव से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। वायु वहलाय एरोसोल जिसको कहते हैं पेंट, उर्वरकों के निर्माण करने वाले कारखाने, प्लास्टिक पेन तैयार करने वाले, घमनकारी के रूप में प्रयुक्त करने पर यह बड़ी मात्रा में निकलती है। इसके अतिरिक्त एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल तथा फार्मेसी उद्योगों में यह बहुत स्तर पर उत्पादित होती है। इसके साथ ही हवाई जहाजों में भी यह मिलती है। शीत युद्ध के दौरान जब सुपरसोनिक विमान आसमान में 15 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर CFC छोड़ते हैं, अणु बम का विस्फोट भी ओजोन परत के लिए बड़ा घातक है। आइए देखते हैं कि ये ओजोन परत में क्षीणता का प्रभाव कैसे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं ये मनुष्य पे पड़ता है, कैसे पड़ता है, मनुष्य की त्वचा पे। यदि ओजोन परत में 1% ओजोन गैस घटती है तो पृथ्वी पर 2% त्वचा कैंसर बढ़ता है। क्योंकि ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद दक्षिणी ध्रुव के पास है, अतः ऑस्ट्रेलिया में मेलानोमा कैंसर से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक हुई है। किरणें जिनकी तरंग दैर्ध्य 250 से लेकर 350 NMS होती है, त्वचा कैंसर इससे ही होता है, इसे यही उत्तरदायी है। दूसरा फर्क पड़ता है आँखों पे, जैसे मोतियाबिंद होना, असाध्य दृष्टि दोष होना और अंधापन का कारण भी पराबैंगनी किरणों का कारण है। तीसरा पड़ता है आपका प्रतिरोधक तंत्र पर, प्रतिरोधक क्षमता का श्वास होने से जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी आशंका बढ़ जाती है। आइए आते हैं मनुष्यों के बाद किस पे पड़ता है, कृषि एवं वनस्पतियों पर। 250 से 350 NMS नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है, ये पराबैंगनी किरणें UVB सबसे ज़्यादा फसलों एवं मानसून को, वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं। इन किरणों का प्रभाव संश्लेषण की क्रिया पर पड़ता है, जिससे फसलों और वनस्पतियों की जो उपज होती है वो बड़ी हानिकारक उसके ऊपर हो जाती है। तीसरा आता है समुद्री जीवों पर, जो समुद्री जीव होते हैं वो बेचारे बड़े प्रभावित होते हैं इनसे। विकिरण का प्रभाव, जो कुप्रभाव होता है, फाइटोप्लैंकटन पर पड़ता है, जो मछलियों का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इनकी संख्या में ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है, अतः भविष्य में मछलियों एवं अन्य सामुद्रिक जीवों के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। जो वायुमंडल है, वायुमंडलों 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की पतली परतें पाई जाती हैं, जो पृथ्वी को सूर्य से निकल के उसकी चाल 6% पराबैंगनी विकिरण में से 5% को अवशोषित करके हानिकारक प्रभाव से रक्षा करती हैं। ओजोन मंडल में ओजोन क्रोह का जो ह्रास होता है, इसकी कमी होती है, इससे पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाएगी, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदेह घातक होगी। पराबैंगनी विकिरण में रहने से चर्म रोग, कैंसर, नेत्रज्योति ह्रास, मोतियाबिंद, पहले बताया आपको, आँख के लेंस का विरूपण, शरीर के प्रतिरोधी तंत्र का ह्रास, फसलों के उत्पादन में कमी और वनों की हानि, समुद्र जीवों का ह्रास, ये सब हो रहा है। तो ये हुआ आपका ओजोन परत के जो क्षीणता है उसके प्रभाव। आगे और देखते हैं, ऋतुओं के अनुसार ओजोन परत की मोटाई जो है वो घटती बढ़ती रहती है। नासा के वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 1988 में उत्तरी गोलार्ध में 1969 से लेके 1988 तक 23% ओजोन का विकास हो चुका है। ओजोन परत लगातार कमजोर होती जा रही है। जो स्पेशलिस्ट हैं इसके, उन्होंने बताया है कि 1% ओजोन का ह्रास होने से 6% कैंसर के मामले बढ़ जाते हैं। बताइए, आगे देखते हैं, ओजोन परत का विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के द्वारा होता है। ये कार्बन अनेक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। इनका आविष्कार 1928 में हुआ और प्रशीतकों में प्रयुक्त तरल पदार्थों में इनका प्रयोग होने लगा। वर्तमान समय में इन कार्बनों का जो उत्पादन है उसका अधिकांश भाग प्रशीतकों, गलनकों अर्थात ट्रीजर्स जिसको आप कहते हैं, वातानुकूलित हवाई छिड़काव करने वाले डिब्बों और फोम को उड़ाने, धातुओं की सफाई करने, चिकित्सा संयंत्रों को कीटाणुरहित करने आदि अनेक कार्यों में इनका उपयोग हम करते हैं। ये कार्बन मानव के लिए हानि रहित, निष्क्रिय, निर्ज्वलनीय तथा विषहीन है। इनका उत्पादन एवं संग्रह करना बड़ा आसान है। अगला देखिए, बाद में अनेक प्रकार के कार्बन जैसे हैलन्स या ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफार्म अनेक कार्यों में प्रयोग किए जाने लगे। जो मिथाइल क्लोरोफार्म है, इसका प्रयोग धातुओं की सफाई, शुष्क सफाई, चिपकाने वाले पदार्थ कोट करने में लगातार बढ़ता गया।